आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। भारत ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुलह के फौरन बाद जंगबंदी के खिलाफ वर्जी किए जाने पर इसराइल और ईरान की सरजनिश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीयों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों के लिए कोई जगह महफूज नहीं है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मयार को तर्क करने की फौरी जरूरत पर जोर दिया। हुकूमत ने अफवाज की जिद्दतराजी के इकदाम के तौर पर दिफाई अमले के सरबरा, CDS और फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी को सभी तीनों शाखों के लिए मुश्तरका अहकामात जारी करने का अख्तियार दिया है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अगले दो दिन के दौरान मानसून के मजीद आगे बढ़ने की पेशगोई की है। और एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट ट्रॉफी में हेडिंगली में जारी पहले टेस्ट मैच के आखिरी दिन इंग्लैंड को भारत ने जीत के लिए 271 रन का निशाना दिया है। अब खबरें तफसील से। भारत ने आज ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की खबरों और अमरीका और कतर की जानिब से अदा किए गए रोल का खैर मकदम किया है। वजारत खारजा ने एक बयान में यह बात दोहराई है कि खित्ते में मुख्तलिफ तनाजात के अजाले और हल के लिए मुजाकरात और सिफारतकारी का कोई मुतबादल नहीं हो सकता। वजारत ने कहा है कि भारत इन कोशिशों में अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है और उम्मीद करता है कि मुतल्लिका फरीक पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए इकदामात करेंगे। उसने मजीद कहा है कि भारत मजमूई और पायदार इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए सभी इम्कानात के सिलसिले में गहरी तशवीश रखता है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए दोनों पर नुक्ताचीनी की है। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू से उन इसराइली तैयारों को वापस बुलाने को कहा है जो ईरान की जानिब रवाना हो गए थे। ट्रंप ने इसराइल को इंतबाह देते हुए कहा कि वह ईरान पर बमबारी न करे। ट्रंप ने मजीद कहा कि इसराइल के साथ तनाजे के पस मंजर में अमरीका ईरान में इक्तदार की तब्दीली नहीं चाहता। इस दौरान इसराइल के वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि उसने वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हुई बातचीत के बाद ईरान पर हमले रोक दिए हैं। दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद पुजिश्कियान ने कहा है कि उनका मुल्क तब तक जंगबंदी का एहतराम करेगा जब तक इसराइल इसकी पासदारी करेगा। जनाब पुजिश्कियान ने मजीद कहा कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है और ईरानियों के मफादात का तहफ्फुज करेगा। इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद दोनों फरीकों ने एक दूसरे पर ताजा हमले किए और एक दूसरे पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया। इसराइली हुकाम ने जंगबंदी के नफाज के बाद ईरान की जानिब से दागे गए 3 मिसाइलों के जवाब में तेहरान के करीब राडार तनसीबात पर इसराइली हमले की तस्दीक की। ईरान के बबूल और बबूलसर शहरों समेत उसके शिमाली सूबे मजंदरान में धमाकों की खबर है जिसके बाद फजाई दिफाई निजाम फाल हो गया। इस दौरान तेहरान ने किसी नए मिसाइल के दागे जाने से इनकार किया है। ईरान की मुसल्ला अफवाज के जनरल स्टाफ ने इसराइल के उस दावे को मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान ने गुज़िश्ता घंटों में इसराइल पर मिसाइल दागे हैं। ईरान के इस्लामी पासदारान इनकलाब ने यह भी कहा है कि ईरान की जानिब से इसराइल पर किए गए आखिरी मिसाइल हमले जंगबंदी के ऐलान से महज चंद मिनट पहले किए गए जो कि इसराइल के बाद मुहलिक हमलों का रद्द अमल था। इस दौरान ट्रंप की जानिब से इसराइली वजीर आजम से सीधे बातचीत के बाद किसी वाकये की कोई इत्तला नहीं मिली है। इलाकाई फजाई आमदोरफ्त बतदरीज बहाल हो रही है। इधर एयर इंडिया ने आज से मगरबी एशिया के लिए अपनी खिदमात दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत आज दोपहर श्रीलंका के 3 और नेपाल के 2 शहरियों समेत कुल 286 अफराद को ईरान से बहिफाजत नई दिल्ली हवाई अड्डे लाया गया। उमूर खारजा के मरकजी वजीर मुमलिकत पवित्रा मार्गेरिटा ने कहा कि हुकूमत ईरान से भारत लाए गए तमाम अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम करने पर अहद बस्ता है। उन्होंने कहा कि ईरान से आने वाला 11वां ग्रुप है और अब तक 2580 अफराद को बहिफाजत ईरान से वतन वापस लाया जा चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि पड़ोसी ममालिक के 6 शहरियों समेत 594 भारतीय शहरियों को इसराइल से 3 परवाजों के जरिए भारत लाया गया है।
Our government is always committed to provide all kind of help, assistance in the time of need, especially the people in distress. And this is the 11th batch we are bringing from Iran. The total number of evacuees from Iran stands 2,580. And by three flights from Israel, we brought 594 our Indian nationals, along with six nationals from the neighboring countries.
وزیر اعظم نریندر مودی نے آپریشن سندور کا حوالہ دیتے ہوئے آج اس بات کا اعادہ کیا کہ بھارت نے اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ بھارتیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کے لیے کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ دنیا نے حال ہی میں بھارت کی طاقت کو دیکھا ہے, جیسا کہ آپریشن سندور نے عالمی منظرنامے پر دہشت گردی کے خلاف بھارت کی پختہ اور کسی بھی قیمت پر سمجھوتا نہ کرنے والی پالیسی کا مظاہرہ کیا ہے. جناب مودی نے بھارت کے عظیم روحانی اور اخلاقی رہنماؤں سری نارائن گرو اور مہاتما گاندھی کے درمیان تاریخی بات چیت کی 7 سالہ تقریب کے دوران یہ بات کہی. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک دفاعی شعبے میں خود کفیل بن رہا ہے اور یہ تبدیلی آپریشن سندور کے درمیان مزید واضح طور پر نظر آتی ہے, جہاں بھارتی افواج نے اندرون ملک تیار کیے گئے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے 22 منٹ کے اندر دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا.
ہماری سیناؤں نے بھارت میں بنے ہتھیاروں سے دشمن کو 22 منٹ میں گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور کر دیا. مجھے وشواس ہے آنے والے سمے میں میڈ ان انڈیا ہتھیاروں کا ڈنکا پوری دنیا میں بجے گا.
جناب مودی نے اجاگر کیا کہ آج کا بھارت قومی مفاہمت کے لیے جو صحیح ہے اس کی بنیاد پر اپنے فیصلے کرتا ہے. انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ملک کا اب اپنی فوجی ضروریات کے لیے غیر ملکوں پر انحصار کم ہوتا جا رہا ہے. ایک تازہ پیش رفت میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں دوہرے معیار کو ترک کرنے اور اقوام متحدہ کی جانب سے نامزد دہشت گردوں اور تنظیموں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اراکین کے سیکیورٹی کونسل سیکرٹریوں کی 20ویں میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے جناب ڈوبھال نے یہ بات کہی. انہوں نے دہشت گردی کے ایکو نظام کو تباہ کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. قومی سلامتی کے مشیر ڈوبھال نے اقوام متحدہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دیے گئے گروپوں جیسے لشکر طیبہ, جیش محمد, القاعدہ, آئی ایس آئی ایس اور ان سے تعلق رکھنے والوں سے لاحق خطرات پر گہری تشویش کا اظہار کیا. ان میں سے زیادہ تر گروپ پاکستان سے ریاستی پشت پناہی میں کام کرتے ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دفاعی عملے کے سربراہ سی ڈی ایس اور فوجی امور کے محکمے کے سیکرٹری کو سبھی تینوں شاخوں کے لیے مشترکہ ہدایات اور احکامات جاری کرنے کا اختیار دیا ہے. مسلح افواج کی جدت ترازی اور کایا پلٹ کے تئیں یہ ایک اہم قدم ہے. ایک بیان میں وزارت دفاع نے کہا کہ پہلے دو یا زیادہ شاخوں سے متعلق ہدایات اور احکامات ہر ایک فوج کی شاخ علیحدہ جاری کرتی تھی. مشترکہ طور پر احکامات جاری کرنے کے فیصلے کا مقصد طریقہ کار کو ہموار کرنا, غیر ضروری عمل کو ختم کرنا اور فوج کی تینوں شاخوں کے درمیان باہمی تال میل کو بڑھانا ہے. اس اقدام سے تینوں شاخوں کے مابین بہتر شفافیت, تال میل اور انتظامی صلاحیت کی بنیاد کی تعمیر ہوگی. اس فیصلے سے مسلح افواج کے قوم کی خدمت کے متحد مقصد کو مزید تقویت حاصل ہوگی. انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھارتی فوج کی تیاری کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں ایک اہم قدم کے طور پر وزارت دفاع نے ہنگامی طور پر ساز و سامان کی خریداری کے تحت 13 کانٹریکٹس کو منظوری دے دی ہے. 1,981 کروڑ روپے کی مالیت کے ان کانٹریکٹس کو بھارتی فوج کے لیے مختص کیے گئے 2,000 کروڑ روپے کے مجموعی اخراجات کے ساتھ قطعی شکل دی گئی ہے. یہ آکاشوانی ہے. کل سمویدھان ہتیا دیوس منایا جائے گا. یہ اس دن کو یاد کرنے کا ایک موقع ہے کہ جب 19 جون 1975 کو بھارتی آئین کو پامال کیا گیا تھا. یہ ہر اس فرد کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بھی ایک دن ہے جس نے ایمرجنسی کی زیادتیوں کا سامنا کیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
بڑھتی سیاسی بے چینی اور عدالتی واقعات کے پس منظر میں ایمرجنسی کا اعلان کیا گیا جس سے اس وقت کی حکومت نبرد آزما تھی. ایمرجنسی کے دوران پارلیمنٹ نے سلسلے وار آئینی ترمیمات منظور کی جن سے عدالتی اور ادارہ جاتی جائزے طریقہ کار کمزور ہوا. آکاش وانی پر من کی بات کے اپنے پروگرام میں خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ایمرجنسی بھارتی تاریخ کا ایک سیاہ باب تھا.
یہ بھارت کے اتہاس کا کالا دور تھا. لاکھوں لوگوں نے इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है।
इंक्वायरी से मुतालिक शाह कमीशन ने यह पाया कि 1,07,00,000 से ज्यादा अफराद की इमरजेंसी के दौरान मुल्कगीर सतह पर नसबंदी की गई। इस अरसे के दौरान तकरीबन 26,000 सरकारी शोबे के मुलाजमीन को वक्त से पहले रिटायर्ड किया गया और अदालती कार्रवाइयों को जाहिर करने पर पाबंदी थी। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज 1975 में इमरजेंसी नाफिज करने के लिए कांग्रेस की ये कहते हुए नुक्ताचीनी की है कि उसकी वजह मुल्क की सलामती का तहफ्फुज करना नहीं बल्कि उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की हुकूमत बचाना था। जनाब शाह ने नई दिल्ली में एक यादगारी तकरीब आपातकाल के 50 साल से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब शाह ने हर किसी पर ये याद रखने के लिए जोर दिया कि लाखों अफराद ने इस मुल्क की जमहूरियत की खातिर लड़ने के लिए अपनी जिंदगियों, रोजगारों और कुनबों की कुर्बानी दी। जनाब शाह ने इस बात का जिक्र किया कि मुल्क इस लड़ाई को इसलिए जीत पाया कि यहाँ के अवाम कभी भी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
लाखों लोग जेल में रहकर अपने परिवार का सब कुछ नष्ट कर कई लोगों के कैरियर समाप्त भी हो गए और वो लड़ाई ने भारत के अंदर लोकतंत्र को जीवित रखा और आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर आज विश्व के सामने
आजाद रहने के ख्याल भर के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस पर एक किताब लिखी है और कल इसका इजरा किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत के खुराक को डब्बा बंद करने के शोबे में एक मुनफरिद तरीकाकार के साथ गुज़िश्ता बरसों में बड़े पैमाने पर तब्दीली आई है जिसने छोटे देही कारोबारियों को बाख्तियार बनाया है। उन्होंने एक रोजनामे में खुराक को डब्बा बंद करने की सनअतों के वजीर चिराग पासवान के एक मजमून को शेयर करते हुए ये बात कही जिससे खुराक को डब्बा बंद करने के शोबे में भारत के यकसर तब्दीली वाले सफर का इरादा होता है। नायब सदर जगदीप धनखड़ कल से उत्तराखंड के नैनीताल के अपने 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नायब सदर कुमाऊं यूनिवर्सिटी की गोल्डन जुबली तकरीबात की सदारत करेंगे और इदारे के तलबा और असातिज़ा से खिताब करेंगे। जल शक्ति के मरकजी वजीर सीआर पाटिल ने आज नई दिल्ली में गंगा के तहफ्फुज से मुतालिक टास्क फोर्स की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने अमली रुकावटों को कम करने और बुनियादी ढांचे की फराहमी के लिए साजगार माहौल को फरोग देने के हुकूमत के अज़्म को उजागर किया। इंतखाबी कमीशन ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी के महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के दौरान चुनाव में धांधलियों के इल्जामात को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि पूरा इंतखाबी अमल तफवीज इख्तियारात के तहत हुआ है। कमीशन ने कहा है कि सभी इंतखाबात पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर किए गए इंतखाबी कवानीन के तहत हुए हैं और उन पर सख्ती से अमल किया गया है। कमीशन ने उन्हें सभी मामलों पर तबादला ख्याल के लिए बाहमी तौर पर काबिल कबूल तारीख और वक्त पर एक मीटिंग के लिए मदऊ किया है। शहरी हवाबाजी की डायरेक्टरेट जनरल की जानिब से दिल्ली और मुंबई समेत अहम हवाई अड्डों पर जामे निगरानी का अमल अंजाम दिया गया। निगरानी से इंकशाफ हुआ है कि मुल्क के हवाबाजी के इको निजाम में मुतअद्दिद कमियां हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल व डीजीसीए की क्यादत में 2 टीमों ने अहम हवाई अड्डों पर रात और सुबह सवेरे जामे निगरानी का अमल अंजाम दिया। भारतीय महकमा मौसमियात ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले 2 दिन में मॉनसून के मजीद आगे बढ़ने के लिए साजगार मौसमी सूरतहाल की पेशगोई की है। आकाशवाणी खबरों से बात करते हुए भारतीय महकमा मौसमियात के सीनियर साइंसदान आर के जनामनी ने कहा कि दिल्ली और दीगर इलाकों में अगले 36 घंटे में मॉनसून की बारिश होने का इम्कान है। एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट ट्रॉफी में भारत और इंग्लैंड के दरमियान जारी शुरुआती टेस्ट मैच के 5वें और आखिरी दिन दूसरे सेशन में खेल जारी है। चाय के वक्फे तक इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेट के नुकसान पर 269 रन बना लिए हैं। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सुलह के फौरन बाद जंगबंदी की खिलाफवर्जी किए जाने पर इसराइल और ईरान की सरजनिश की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि भारतीयों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों के लिए कोई जगह महफूज नहीं है। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मियार को तर्क करने की फौरी जरूरत पर जोर दिया है। हुकूमत ने अफवाज की जिद्दत तराजी के इकदाम के तौर पर दिफाई अमले के सरबराह CDS और फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी को सभी तीनों शाखों के लिए मुश्तरक अहकाम जारी करने का अख्तियार दिया है और महकमा मौसमियात ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में अगले दो दिन के दौरान मानसून के मजीद आगे बढ़ने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।